बस आगे मैं कुछ नहीं बोल रही, मुसरिफ होने की अलामत है घरों में जो हम हैंग करते हैं। ये पूछ रही हैं कि नजर की क्या हकीकत है। नजर बरहक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मौजूद हैं, नजर लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर के मामले में हदीस का मफहूम आता है कि बहुत से लोग अपनी कब्रों में नजर की वजह से पहुंच जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि नजर इंसान को पहाड़ से जमीन पर और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। सो नजर लगती है। बिल्कुल अलग टॉपिक आपने छेड़ दिया, मैं इस वक्त इस पर बात करूंगी तो मेरी तीन आयतें रह जाएंगी जो मैंने बात करनी है। नजर बरहक है, नजर से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे सुबह शाम की आयात कही हैं। वो दो मेन दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पर पढ़ा करते थे, आप वो पढ़िए। अपने बच्चों पर पढ़कर आप उन पर दम कर दीजिए, आपके बच्चे बड़े हैं, आप उनको खुद पढ़ने की तलकीन कीजिए। रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, सूरह मुल्क पढ़कर सोइए, सूरत फलक, सूरह नास पढ़िए, आपको नजर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। याद रखिये, नजर भी अल्लाह के हुक्म से ही लगेगी। और नजर एक तीर की तरह होती है, अगर आपके सामने शील्ड है दुआओं की, वो तीर आएंगे और गुजर जाएंगे। अगर आपके सामने शील्ड नहीं है तो फिर तीर आके आपको लगेगा। बट जूता, धागा, तावीज, टर्किश आई, हर दूसरे घर में टर्किश आई मौजूद। देखें, अब जब तक नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, जब मालूम हो जाए प्लीज उसको हटा दें अपने घर से। अगर आप कहें कि नहीं जी बहुत ही मेहनत से खरीदी हुई और सोवेनियर के तौर पर है, फिर उसका एक तरीका है। देखें, आप उसके अंदर आंख बनी हुई है ना, आंख बनी हुई है, बाहिम्मत मुसलमान तो उसको उठाकर कबाड़ियों को दे देगा या तोड़ देगा। मेरे जैसा होगा तो तोड़ देगा, मैं कबाड़ियों को भी नहीं दूंगी। इसलिए कि कोई दूसरा कबाड़िये के पास से आंटी गुजरती हुई गाड़ी में देखेंगे इतनी अच्छी टर्किश आई, वो कहेगा ये मैडम ये तो 1,000 की, कहेगी हाँ दे दो 1,000 की। सो मेरे जैसा होगा तो तोड़ देगा। मुझे याद है एक टाइम था जब मेरे पास पता नहीं कितने कार्टन के कार्टन सीडीज थे और कैसेट्स थे, इसलिए कि दौरे जाहिलियत हम सब पर गुजरा है, सॉन्ग्स के थे, गानों के थे, किसके थे। मुझे याद है कि समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, किसी ने कहा इसके ऊपर कुरान की टेप, वो उस वक्त रिकॉर्डिंग्स होती थी कुरान की, अब तो ऑब्सोलीट हो गई कैसेट्स भी और सीडीज भी, कि इसके ऊपर कुरान को टेप करवा दें। तो मेरा वो उस पर मेरा दिल नहीं मान रहा, मैंने फिर सीडीज को कचरे में फेंकने के बाद मैंने बाहर निकाला, मैंने लिटरली उनको तोड़ा और फिर मैंने उनको डाला। इसलिए कि किसी ने उठा लिया और किसी ने सुनना शुरू कर दिया तो खामखा में एक मेरे हाथ से निकली हुई चीज जो है वो किसी और के कानों में जो है वो रस घोलेगी और मेरी कब्र में जो है वो कोई ना कोई मुश्किल क्रिएट कर देगी। सेम इज द केस विद सच थिंग्स। जो चीजें आपने घरों में लटकाई हुई हैं नजर से बचने के लिए, देखें आपकी चीजें नजरों से नहीं बचाती, दीज आर सुपरस्टिशंस। नजर से आपको आपकी दुआ बचाएगी। और एक और बात, अपनी नेमतों को इतना ज्यादा फ्लॉन्ट करना छोड़ दें। मैं क्या खा रही हूं, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं कहां पहुंची हुई हूं, फेसबुक लोकेशन ऑन। मैं किस रेस्टोरेंट में हूं, फेसबुक लोकेशन ऑन। स्नैपचैट में तो ज्यादातर आंटीज नहीं है, लड़कियां हैं। जिस दिन माएं स्नैपचैट में पहुंच गई उस दिन सारी लड़कियां और लड़के वहां से भाग जाएंगे, बिल्कुल जैसे फेसबुक। एक टाइम पे फेसबुक सिर्फ यूथ इस्तेमाल करती थी और अम्मियों को इस्तेमाल करना नहीं आता था। अम्मियां इतने शौक से देखती थी ये क्या है। जब सारी अम्मियों ने फेसबुक का रुख किया, सारी औलादों ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का रुख कर लिया। सो बच्चों, जिस दिन अम्मियां स्नैपचैट पर आ गई, और तुमको अपना वैसे और बहुत सारे ऐप्स हैं मुझे पता है बच्चों के पास, स्नैपचैट के अलावा भी बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं, अपनी नेमतों को फ्लॉन्ट ना करें। ये जो अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींच खींच के आप फेसबुक पर डालते हैं, नजर लगती है और क्यों नहीं लगती। आप इमेजिन करें एक बच्ची 17 साल 18 साल की, वो उसकी अम्मा ने उसको कहीं जाने नहीं दिया, वो जाना चाह रही थी फ्रेंड्स के साथ, अब वो रो रही है, बहुत डिप्रेस है। और बच्चे हमारे इस बात पे इतना डिप्रेस नहीं होते कि अम्मा नाराज हैं और अब्बा नाराज हैं और दो दिन से बात नहीं कर रहे, इस बात पे इतना डिप्रेस होंगे कि बीपी लो हो जाएगा, फिर अम्मा को डॉक्टर के पास इमरजेंसी में लेके भागना पड़ता है। वो डॉक्टर पूछती है क्या हुआ था, तो फिर अम्मा बताती है वो असल में फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाना चाह रही थी, मैंने जाने नहीं दिया, तो बेचारी का बीपी लो हो गया। इस बात पे बच्चों के ऊपर कोई सुई नहीं हिलती कि दो दिन से अम्मी नाराज हैं और मुझसे बात नहीं कर रही। दुख होता है ना। मुझे याद है अगर हमारी अम्मा हमसे नाराज हो जाती थी, हम उनकी जान से लट के पीछे 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 फिरते रहते थे, अम्मा सॉरी। और अम्मा थी हमारे, हमारी अम्मा थी इतने टेंट्रम्स थ्रो करती थी, अगर सुन रही मेरी अम्मा बोल तो मेरी बातें सुनती नहीं है मेरी अम्मा, मुझे पता है। मगर मुझे अब लगता है कि अब माएं बच्चों को मना रही होती हैं, हमारे टाइम में हम माओ को मना रहे होते थे कि अम्मा सॉरी गलती हो गई, अम्मा सॉरी गलती हो गई. आज माए कहती हैं, कह लो मेरा बच्चा सॉरी ना, मैंने इसलिए थोड़ी डांटा था, मैं तो समझा रही थी. सो अब सब कुछ माशरे में मिक्सअप हो गया है. नजर से बचना है, सुबह शाम की दुआओं में रेगुलर होइए, औलादों को रेगुलर कीजिए, आपकी शील्ड होगी इंशाल्लाह. अल्लाह पर ईमान रखिए, अपनी नेमतों का फ्लॉन्ट मत कीजिए. मत अपनी और अपने शौहर की प्यारी प्यारी तस्वीरें खींच खींच के, एक तो एनिवर्सरी करते हैं, अब एक और कहानी छेड़ देंगे, फिर बर्थडेज भी करते हैं, फिर उनकी प्यारी प्यारी अपनी मुस्कुराती हुई, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, शोहर भी मुस्कुरा रहे हैं, जो कि रेयरली होता है कि आप दोनों एट ए टाइम मुस्कुरा रहे हैं, और फिर आप में तस्वीर खींची, वो भी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप एक दूसरे को नहीं देख रहे होते. किसको देख रहे होते हैं? आप कैमरे को देख रहे होते हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे होते हैं. एक औरत की रिसेंटली डाइवोर्स होती है, वो फेसबुक खोल के आपकी तस्वीर देखती है, और उसका शौहर अब्यूसिव था उसके साथ, और उसका शौहर उसको टॉर्चर करता था. वो आपकी और आपके शौहर की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखती है, और किस नज़र से देखती है? नज़र तीर की तरह होती है, और आप में दुआएं नहीं पड़ी हैं, और आपको नज़र लग जाती है. फिर आप कहती हैं, मैंने टर्किश आई नहीं लटकाई थी ना घर में, इसलिए मुझे नज़र लग गई. प्लीज़ ये मत करें, दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस. अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, दुआएं पढ़िए, पहले अपना हथियार अपनाइए, अपनी शील्ड डेवलप कीजिए, और उसके बाद अपनी नेमतों को फ्लॉन्ट करना छोड़ दें. अनदर थिंग, जब मैं बात इतनी कर ही रही हूं, तो प्लीज जो आप अपनी फेसबुक के अलावा अपने व्हाट्सएप की डीपी बनाती हैं, कोई बात नहीं, अगर बन जाती है गलती से फिर तस्वीर वो लग जाती है, वहां पर भी जो भी आप अपनी तस्वीर लगाती हैं, बस वो लोग जो कि व्हाट्सएप में तो हर तरह के लोग होते हैं, मर्द भी होते हैं, दर्जी भी है, कभी कभी आपका कोई कबाड़िया भी रेगुलर आपके साथ आने चीजें लेने वाला होता है, उसका नंबर भी आपके पास होता है. स्मार्टफोन तो सबके पास है, दूध वाले के पास भी स्मार्टफोन है, दर्जी के पास भी स्मार्टफोन है, प्लम्बर के पास भी स्मार्टफोन है, कारपेंटर के पास भी स्मार्टफोन है, आपका साउंड सिस्टम वाला, कोई मेरे जैसी आप होंगे तो साउंड सिस्टम वाला, उनके पास भी स्मार्टफोन है. अगर मैंने वहां अपनी डीपी, मैंने कहा मैंने फेसबुक पर तो नहीं डाली ना, मैंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी जो है उस पर अपनी तस्वीर लगा ली, सब देखेंगे. और आपका ख्याल है कैसे देखेंगे? आपका ख्याल है वो छोटी सी डीपी जो चैट बॉक्स में यूं करके लाइन में आ रही होगी उसमें देखेंगे, या उसको क्लिक करके बड़ा करके देखेंगे? फिर सेव भी कर सकते हैं अपने पास. एंड फॉर ऑल द यंग गर्ल्स, क्या क्या तस्वीरें फोटोशॉप नहीं हो रही हैं, पोर्नोग्राफी के अंदर पाकिस्तान नंबर 2 पोजीशन पर आ चुका है, और किसका चेहरा कहां से उतार के किस औरत के मुंह पे लगा दिया जाता है, दिस इज वेरी कॉमन. साइबर वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान टॉप लिस्टेड है साइबर क्राइम्स में, पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान नंबर 2 पोजीशन पर आ चुका है. और ये आम बात है कि आप पूछ लीजिए जाके, जितनी भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन साइबर नेटवर्किंग के अंदर काम करने वाले अगर कोई लोग हैं वो आपको बता देंगे, फेसबुक के ऊपर से, फेसबुक इज अ पब्लिक मीडियम. अभी देख लीजिए क्या हुआ है फेसबुक के साथ, जुडिशरी बैठी है पूरी, और कितना इन्फॉर्मेशन यहां से वहां हुआ है. फेसबुक के ऊपर पब्लिक प्रोफाइल्स हैं आपके, आपकी तस्वीर वहां से सेफ होती है, सिर्फ आपकी तस्वीर का फोटोशॉप चेहरा उतारा जाता है, उसको किसी नेकेड औरत के जिस्म पे लगा दिया जाता है, और वो कल को तस्वीर आपको या आपके वालिदैन को ब्लैकमेल करने के लिए भेजी जा सकती है. क्या इज्जत रह जाएगी उस बच्चे की? क्या इज्जत रह जाएगी उन वालिदैन की? दीज आर नॉट द माइनर थिंग्स. फर्क क्या पड़ता है, इतनी पेटी बातों पे हर वक्त दर्स में बोलती रहती हैं आंटी, फेसबुक पे तस्वीर ना लगाओ. इट्स नॉट जस्ट अ पेटी थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. और ये हो रहा है, कितनी बच्चियां बदनाम हुई हैं इसकी वजह से, कितने वालिदैन ब्लैकमेल हो रहे हैं इसकी वजह से. मत अपना तमाशा बनाए, नजर नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? वो नजर लगने के फैक्टर मैंने अलग बता दिए, इसके रेपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको अलग बता दिए. अपने आप को अल्लाह के कलाम से जोड़िए, आपको अपने ख्वाहिशात को और डिजायर्स और टेम्पटेशंस को थामना भी आएगा, आपको अपनी लिमिटेशंस पता चलेंगी, आप अपनी सुबह शाम के हथियार दुआओं की शक्ल में अपने वेपन्स को अपने साथ रखेंगी, और इंशाल्लाह आपके ऊपर लोगों की नजर नहीं लगेगी. वरना अगर नजर के डर से आप और मैं इस तरह से डरने लग जाएंगे तो फिर क्या घरों में बंद होकर बैठ जाएं, क्या करें फिर? सीधी सी बात है, अल्लाह ने मुझे और आपको तरीका सलीका सिखाया है. दुआएं पढ़िए सुबह शाम की, इन सुपरस्टिशियस चीजों से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए. ज्यादातर होता यही है, इंसान कुरान से नहीं जुड़ता, इंसान कुरान के बताए हुए एंगल से सबक नहीं लेता, इंसान तारीख से सबक नहीं लेता, इंसान अपने माशरे के लोगों के साथ जो बुराई होती है उससे सबक नहीं लेता, और जब इंसान अपने दीन से दूर हो जाता है तो फिर इंसान सुपरस्टिशियस स्टफ के अंदर इंक्लाइंड हो जाता है. ये सारी चीजें एक दूसरे का रिपल इफेक्ट बनती हैं, आप माने या ना माने, रिपल इफेक्ट बनती हैं. ये जो दुल्हन के ऊपर से आप यूं करके नोट गुजारते हैं, ڈانس کرا کے اس کو. پتہ نہیں آپ گزارتے کہ نہیں گزارتے, پہلے زمانے میں تو گزارتے تھے, 20 سال پہلے تو گزارتے تھے, میرے سر پہ سے تو بہت گزرے تھے. آپ کے سر سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ آپ اپنا صدقہ اتار کے کسی کو دیتے, تو یہ گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ واٹ از دا فلاسفی آف نوٹ گھمانا؟ نظر اتار رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو مرچیں جلائی جاتی ہیں, ہاں نظر اتار رہے ہوتے ہیں. کس نے سکھایا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے, حضرت علی نے, حضرت ابو بکر نے, کس نے سکھایا؟ سپرسٹیشنز مشرق معاشروں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں. کوئی بات نہیں, اگر اب تک کرتے تھے. عقل مند کون ہے؟ جب علم آ جائے اپنی اصلاح کر لے. جہاں آپ دین سے دور ہوں گی, جہاں آپ توحید سے دور ہوں گی, وہیں آپ کے اندر سپرسٹیشیس میٹرز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں اس آیت میں سپرسٹیشیس میٹرز میں آگے بڑھنے والوں کو مصرف کہا گیا ہے, اسراف کرنے والا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتا دی, اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دی گئی حد سے آگے بڑھ جانا. ایک ہوتا ہے مال کا اسراف, ایک ہوتا ہے گفتگو کا اسراف, ایک ہوتا ہے وقت کا اسراف, ایک ہوتا ہے خیالات کا اسراف. اور خیالات کے اسراف میں ہی آپ کے عقائد کا اسراف آتا ہے. جب آپ سپرسٹیشیس میٹرز میں چلی جاتی ہیں تو آپ اپنے توحید کے سرکل سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اسراف کر جاتی ہیں. سپرسٹیشنز میں جائیں گی تو آپ توحید کے دائرے سے باہر نکل جائیں گی. اور جب انسان توہم پرستی کی طرف جاتا ہے, اس کو مسنون دعائیں ناکافی لگتی ہیں, اس کو وحی کا علم ناکافی لگتا ہے, اس کو یہی لگتا ہے کہ بھئی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بتائیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, بہت فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے, ہسبینڈ کا بزنس فلورش نہیں ہو رہا ہے, اس وقت کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا پڑھیں, کوئی دعا بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ کہیں آپ کثرت سے استغفار کیجیے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس جی ہاں, آپ کو جو بھی ایشو ہے پڑھیے جا کے سورت نو, آپ کو پتا چل جائے گا. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, آپ جس مشکل کے لیے استغفار کریں گی اللہ آپ کے لیے اس مشکل کو دور کر دے گا. دس از دا مین تھنگ ٹو ڈو استغفار. اس لیے اور استغفار ایسے نہیں استغفار ایسے کیجئے کہ ہر مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہوئے مجھے اپنا ایک گناہ یاد آئے. مسکراتے مسکراتے استغفر اللہ نہیں, بازار میں چلتے چلتے دو باتیں کرتے کرتے استغفر اللہ نہیں, کانشیس لیول سے استغفر اللہ. انشاءاللہ اللہ اپنے آسمان کے دروازے آپ سے کھولے گا. اور لوگ نہیں سمجھ رہے, لوگ سپرسٹیشیس مائنڈ کے ہیں. لوگ کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے, وظیفہ بتائیے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, وظیفہ بتائیے. بیٹے کو جاب نہیں مل رہی, وظیفہ بتائیے. پلیز ان وظیفوں سے باہر نکل آئیے. اس لیے یہ کتاب بیچاری ابھی بھی یہیں رکھی ہوئی ہے. پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کتاب کی بہت دیوانی ہو گئی ہوں. نزیہ جہاں بھی ہیں پلیز اس کتاب کو یہاں سے اٹھا لیجیے گا. وظیفوں سے باہر نکلیے. قرآن نے جو آپ کو آیات اور صورتیں اور جو آپ کو مصحف دیا ہے اس کو ریگولیرٹی سے تھامیے. قرآن پڑھیے, تلاوت کیجئے, قرآن کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلک میں صحیح احادیث موجود ہیں. مسنون اذکار میں صبح شام کی دعاؤں کو نمازوں کی طرح اپنے اوپر لازم کر لیجئے. فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار پڑھے جاتے ہیں. یہ ایک نارمل میں آپ کو بتا رہی ہوں. کبھی نہ پڑھ سکیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میری آنکھ کھلی 10 بجے تو میں پڑھ نہیں سکتی. جب موقع ملے تب پڑھ لیجئے, مگر جنرلی عادت بنائیے فجر کے بعد. اور شام کے اذکار کو بٹوین عصر اینڈ مغرب پڑھا جاتا ہے, تو اپنا ایک روٹین بنا لیجئے کہ میں نے صبح شام کے اذکار ضرور پڑھنے ہیں اور مجھے وظیفوں کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. جو مسنون اذکار میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ ایکسیسو سٹف میں انوالو نہیں ہوتے. آپ کی اور میرے لیے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین جو ہے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ سپرسٹیشیس مائنڈ ہے ہمارا, جس کی وجہ سے جب بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا ہے. تو اب ہم کسی بزرگ کا بتائیں جو اس جادو کو انڈو کر دے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جہاں سپرسٹیشنز کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو حیضہ ہے جادو میں انوالو ہونے کا, جادو کے بارے میں سوچنے کا. اور زیادہ تر تو ہمارے مارننگ شوز نے ہمیں اس طرف ڈال دیا ہے. سو سوری اگر کوئی آپ میں سے یہاں بیٹھا ہوا جو مارننگ شو چلانے والوں کے ساتھ ہے, لیکن مارننگ شوز نے اس طرف ڈالا ہے لوگوں کو, اس لیے کہ دکھا دکھا کر باتیں اور ڈرامیٹک انداز میں بتا کے کہ اچھا جادو ہو گیا, پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ نظر آیا, پھر وہ ہو گیا. آپ کو اپنے اعمال کا بھوت نظر آتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, جو دعائیں پڑھنے والے ہوتے ہیں جنات ان کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتے. جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جنات ان کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں. آپ کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. اگر کسی کو لگتا ہے اس پر جادو ہے تو طریقہ کیا ہے؟ کالے جادو کے مقابلے میں سفید جادو کرایا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کی تلاوت کو بڑھا دیجئے, اجوا کھجور کھائیے صبح میں نہار منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ اس پر جادو ہے یا اس کو لگے نظر ہے, نظر کے لیے بھی آتا ہے, تو آپ اجوا کھجور, اب تو ایزیلی اویلیبل ہے کراچی میں بھی, اگر آپ اس وقت عمرہ کرنے نہیں بھی جا رہے ہیں, کسی کو محسوس ہوتا ہے, صبح نہار منہ آڈ نمبرز میں اجوا کھجور کھا لیجئے, موسٹ پروبیبلی 7 in numbers, اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اور ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو, ورنہ آڈ نمبر میں 1, 3, 5, 7 کر کے آپ کھا سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت بڑھا دیجئے اس پورے یقین اور پورے کنوکشن کے ساتھ. آیت الکرسی, سورت فلق اور سورہ الناس پڑھیے کہ انشاءاللہ اگر مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کا امپیکٹ میرے اوپر نہیں آنے دے گا. یہ ایمان درکار ہے, یہ ایمان اس وقت فورگوٹن ہے اس امت کے اندر, بھولی بیٹھی ہے قوم اس چیز کو, امت اس چیز کو. اس ایمان پر آئیے, انشاءاللہ آپ سپرسٹیشیس چیزوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب انسان سپرسٹیشیس چیزوں سے نکلتا ہے تبھی اس کو قرآن کا بلاغ ہونا اور مبین ہونا واضح ہوتا ہے. شرک والا انسان کلیئر تھنکنگ پیٹرن پر نہیں ہوتا, مصرف انسان سپرسٹیشیس مائنڈ کلیئر تھنکنگ پیٹرن پر نہیں آ سکتا. سو شرک سے دور ہونا ہے اور اپنے آپ کو اسراف سے دور کرنا ہے. رسولوں نے بھی یہی بات اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو تمہارا اسراف ہے یہ اصل میں تمہارے اندر کیوں انوالو ہے اتنا زیادہ, اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ دنیا پر غور نہیں کرتے, تاریخ سے سبق نہیں لیتے, قرآن کی آیات یا رسولوں کی تبلیغ پر جو احکامات تھے اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ یہ سب جو تین بیریئرز تھے کانسٹنٹلی ان کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار ہمیں بتا رہا ہے. وہاں آیا تھا نا آیت نمبر 9 میں, وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہی تین بیریئر اگر آپ نے ہٹانے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نمبر 19 کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کی بڑی ٹف آڈینس تھی, انہوں نے, ان رسولوں نے بڑا ٹف ریزسٹنس فیل کیا ہے. تو اگر آپ کو بھی اس وقت قریش کی طرف سے بہت زیادہ پرسیکویشن کا سامنا ہے تو گھبرائیے نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, شہر کے دور سے ایک رجل, ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قال, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, ان بھیجے ہوں کو فالو کرو. شہر کے دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا کہ ان مرسلین کو فالو کرو. اب آپ ذرا دیکھیں, ابھی تک اس قوم میں, اس قریا میں تین رسولوں کے کتنے فالوورز تھے جو قرآن نے اس کہانی میں بتایا؟ ایک بھی نہیں تھا. اب رسولوں کا کتنے فالوور ان کو رسولوں کو مل رہے ہیں؟ ایک. سو ذرا آپ پروپورشن دیکھیے, تین رسول, ایک فالوور. اب آپ اس پر غور کریں. اگر اچھا, یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے, اس کہانی میں آپ کو بہت سے مسنگ لنک مل رہے ہیں. ون آف دا مسنگ لنک از آلسو, جو کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ واللہ عالم لگتا ہے یہی ہے کہ اس قریہ میں ان تینوں کا کوئی فالوور نہیں تھا, مگر واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اس بستی کا ٹائم پیریڈ نہیں معلوم ہے, اس بستی کا لوکیشن نہیں معلوم ہے, اس بستی کا نام نہیں معلوم ہے, ان رسولوں کے نام نہیں معلوم ہے. قرآن میں جتنی بھی ہسٹری آئی ہے یہ ریکارڈ ہے, تمام ہسٹورک لائن کے اندر, ریکارڈڈ ہسٹورک لائن کے اندر, کہ آج تک کسی ہسٹورین نے قرآن میں ڈسکرائب ہسٹری پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ جو قرآن نے یہاں بات ہسٹری کی بتائی ہے دس از پرابلمٹک. اس لیے کہ قرآن فگرز ہی نہیں دیتا ہے, قرآن وہ ڈیٹیلز ہی نہیں بتاتا جہاں پرابلم ہو سکتی ہیں. بائبل آپ پڑھیں قرآن کے مقابلے میں, جینیسس پڑھیے, جو انگلش ٹرانسلیشن جینیسس کا ایزیلی اویلیبل ہے, وہاں پر بہت ہسٹری ہے. جوش ٹریڈیشن سے انہوں نے کافی ہسٹری کو انکارپوریٹ کر دیا ہے بائبل کے اندر. آپ کو معلوم ہے نا, بائبل از ناٹ جسٹ دا ورڈ آف گاڈ, بائبل کے اندر اللہ کا کلام ابھی بھی موجود ہے بٹس اینڈ پیسز میں, بائبل کے اندر ان کی اپنی ہسٹری موجود ہے, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول, ان کے کوٹیشنز, ان کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. سو بائبل میں بہت ہسٹری ہے. جرمن ہسٹورینز نے کئی مقامات پر بائبل کی ہسٹری میں ڈسکرپنسیز نکالی ہیں, कि जिस टाइम पीरियड में बाइबल ने किसी पर्सनैलिटी को मेंशन किया है कि ये इस टाइम पीरियड के थे, अगर आप हिस्ट्री लाइन में उसको चेक करते हैं, सो देर इज अ डिस्क्रिपेंसी. वो हकीकत में हिस्ट्री में उस जगह पर आया ही नहीं. उनके मुकाबले में, बाइबल के मुकाबले में, आप कुरान के अंदर कोई हिस्टोरिकल डिस्क्रिपेंसी निकाल ही नहीं सकते. ये कुरान का एक मोजज़ा है. हिस्ट्री की बात ऐसे करता है कि कहीं से कोई उसके अंदर फ्लॉ निकल ही नहीं सकता. सो ये जो दरमियान में हमें मिसिंग लिंक मिल रहे हैं, असल में ये मिसिंग लिंक बेहतरीन है समझने और समझाने वालों के लिए. हमारे लिए जो बात आयात से सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इनका कोई फॉलोअर नहीं था, अब अल्लाह ने उनको एक फॉलोअर दे दिया. जहन में ख्याल ये आता है कि जिस इलाके में तीन रसूल ऑलरेडी दावत का काम कर रहे थे, नबी भी नहीं थे, रसूल थे. नबी बेसिक लेवल है, रसूल हाईएस्ट लेवल होता है. नबी जो होता है उसको कहते हैं नबी इज द आम टर्म, जनरल टर्म. रसूल इज द खास टर्म, स्पेसिफिक टर्म. रसूल को स्पेसिफिक शरीयत देकर किसी स्पेसिफिक कौम की तरफ भेजा जाता है. रसूल कत्ल नहीं हो सकते, अंबिया कत्ल हो जाते हैं. अंबिया और रसूलों का फर्क यह है कि तमाम रसूल नबी तो होते हैं, तमाम रसूल नबी होते हैं, लेकिन तमाम नबी रसूल नहीं होते. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल, आम एंड खास का. इस इलाके में ऑलरेडी तीन रसूल मौजूद थे और अल्लाह ताला ने उनको एक फॉलोवर दे दिया. पीछे आया था लकद हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि अक्सरियत बात नहीं मानेगी, और यहां बता दिया गया तीन रसूल थे पैगाम देने वाले, फॉलोअर एक ही नजर आ रहा है. तो आप भी मत घबराएं अगर आपके पास इस वक्त फॉलोअर नहीं है. उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप अपना बात, अपना पैगाम पहुंचाते रहें, कोई तो इस अक्सरियत में होगा. माने तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब, कोई तो होगा जिसके दिल पर आपकी दावत इम्पैक्ट कर रही होगी. यहां पर भी अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट उस कहानी के जरिए उन आयात को जो पहले हिस्से में आई थी उनको इलैबोरेट कर दिया कि जिस इलाके में रसूल दावत दे रहे थे वहां से कोई नहीं निकला, मगर बात पहुंचते 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 एक जगह पर एक शख्स तक पहुंची जिसने अल्लाह की बात को हक जाना और वो अंबिया की बात पर लब्बैक कहकर यहां तक पहुंच गया. सो आपकी और मेरे लिए भी सबक है. अगर आपकी दीन पहुंचाने में, घर में, चाहे औलाद ही हो, कोशिश तो इंसान आखिरी सांस तक करता है ना, खानदान में, घर में, माशरे में, आपके दीन पहुंचाने पर आपके फॉलोअर्स नहीं बनते हैं, डोंट गिव अप, डोंट गो फॉर नंबर काउंट. मेरी क्लास में कितने लोग आते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद मी. कोई ना भी आए तो मैं अपने आप को सुनाने वाली, और कम से कम जिसका घर होगा वो तो होगा ही ना. सो नंबर काउंट में मत जाए, अल्लाह भेजेगा. ये कहा जाता है अमंग द स्कॉलर्स के जो शागिर्द होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो दीन की बात सुनने वाले होते हैं, दे आर लाइक रिस्क. ये रिस्क की तरह होते हैं. और यह रिस्क का मामला किसके हाथ में होता है? मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरी डिग्री मुझे नहीं खिलाती. जो नसीब में होता है वो रिस्क आपको आ जाता है, और अल्लाह आपको वो रिस्क नसीब में दे देता है. सेम इज द केस विद द फॉलोअर्स. रसूलों से यही कहा गया, डोंट गो फॉर द नंबर्स. आपका काम है बलागुल मुबीन कर देना, बाकी अल्लाह का काम है, आप उसको छोड़ दीजिए. सो पहली ऑब्जर्वेशन, हमेशा इस बात को याद रखें, कभी किसी क्लास में बहुत से लोग देखकर ये मत समझें कि यहां अल्लाह की मदद साथ में है, और किसी क्लास में कम लोग हैं तो वहां अल्लाह की मदद नहीं है. नाउजुबिल्ला, ये मत समझें. डोंट कंपेयर पीपल लाइक दिस. अल्लाह का मामला, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने आएंगे अल्लाह के इज़्ज़त से आएंगे, अल्लाह की रजा से आएंगे. लेकिन आपको और मुझे हेड काउंट में कभी भी नहीं जाना. कितने आते हैं इसकी फिक्र नहीं करनी. जो जिम्मेदारी मैं अदा कर रही हूं उससे अगर एक का भी दिल खुल जाता है, यहां पर एक का भी दिल खुल गया, और दिल भी एक का ऐसा खुला कि उस उन तीन अंबिया, उन तीन रसूलों के फॉलोअर्स का जो एक इंसान था जिसका नाम भी मेंशन नहीं है, कुरान का सेलिब्रिटी, कुरान में आज भी उसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने हजार साल पुरानी एक पर्सनैलिटी है, आज भी हम उसका जिक्र पढ़ रहे हैं 2018 में बैठ के. किसी को क्या पता था कि 2018 के रमजान में भी इस शख्स को मालूम था जब इसने लब्बैक कहा होगा इन रसूलों की बात के ऊपर और दौड़ता हुआ आ रहा है इस करिया की तरफ, इसको मालूम था एक टाइम आगे गुजरेगा, 2018 तक दुनिया सलामत रहेगी, 2018 में कराची का एक शहर होगा, उसमें एक इलाका होगा फेज वन का, उसमें एक खातून का घर होगा जिनका नाम नजिया होगा, उनके घर में जो है आप सब बैठ के, बहुत सी औरतें बैठ के आपके नाम को बगैर नाम के आपका डिस्कशन करेंगे। इसको नहीं मालूम था। इसी तरह आपको और मुझे भी नहीं मालूम कि हमारे मरने के कितने साल के बाद लोग हमारा नाम लेकर किसी नेकी पर अमल करेंगे। तो नेकी पहुंचाने से कभी गुरेज मत कीजिए। जिंदगी में आराम के लिए नेकी बताना मत छोड़िए। नेकियों को जिंदगी में इस खौफ से मत छोड़ें कि बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। याद रखें, मेहनत और मुश्किल खत्म हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा? नेकी। इसीलिए कहते हैं लज्जत की वजह से गुनाह मत कीजिए, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। अपने आप को थकाएं अल्लाह के रास्ते में। मुबारक है अल्लाह के रास्ते में थकना, मुबारक है अल्लाह के रास्ते की एफर्ट। इस शख्स को नहीं मालूम था कि इतने हजारों साल के बाद भी मेरा नाम उस किताब का हिस्सा बन जाएगा जो किताब रहती दुनिया तक खुद खालिक कायनात ने महफूज कर दी है। आप जितने कुरान खत्म करते हैं, आप जितनी कुरान की तिलावत करते हैं, जितने कुरान के कोर्सेज होते हैं, जहां जहां कुरान पढ़ा जाता है, हरम में हो, मस्जिद नबवी में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में हो, दुनिया के किसी नॉन मुस्लिम मुल्क के अंदर कोई मुस्लिम घराना कुरान पढ़े, क्या इस शख्स को याद किया जाता है? ही इज द सेलिब्रिटी ऑफ द कुरान। मगर इसका नाम कोई नहीं जानता। इसका नाम क्या था? इसका इतना सेलिब्रिटी होना ही काफी है कि अब भी, आज भी और रहती दुनिया तक, जब जब इसका जिक्र पढ़ा जाएगा, इसकी कब्र के अंदर रिवॉर्ड अजर की सूरत में, अजर के असरात इस तक पहुंचते रहेंगे। जिस तरह हमें रसूलों के पीछे चलने का कहा गया है, इस शख्स के पीछे चलने की भी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट दी गई है कि वही अमल, वही रास्ता, वही तरीका, वही मैथडोलॉजी, वही कन्विक्शन इख्तियार करो जो इस शख्स का था। देखो इसको अल्लाह ताला ने फिर कैसे जो है वो कुरान के अंदर वैल्यू की। मिन अक्सल मदीना थी, ये शहर के दूसरे एंड से आया। आप देखें कहानी चल रही है असहाबुल करियती की, असहाबुल मदीनती की नहीं है, कहानी है असहाबुल करियती की। अब दूसरा लफ्ज आया है अल मदीना, वदरिब लहुम असहाबल करिया, और यहां आया है एक शख्स दौड़ता हुआ आया, मिन अक्सल मदीना। यानी कहा जाता है मदीना बड़े शहर को कहते हैं कंपैरेटिवली, बड़ा मतलब एरिया वाइज जो बड़ा होता है, बड़ा मतलब ये नहीं कि कॉस्मोपोलिटन होता है। करिया ज्यादा हसल बसल वाला था। ये जो मदीना था ये एक दूर का कोई इलाका था, जैसे दूर का इलाका एरिया वाइज बड़ा होगा लेकिन पॉपुलेशन कम होगी। सो ये दूसरा शहर था, कोई कोई दूसरा टाउन था, और उसके भी दूर के इलाके से, अक्सल मदीना थी, उसके भी दूर के इलाके से ये शख्स जो है इसने तबलीग का पैगाम सुना। अब फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट तो होती नहीं थी उस वक्त, कि जब रसूल दावत दे रहे थे तो उन तक भी जा रही थी, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, टीवी नहीं था, केबल नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो इसका मतलब है किसी ने इस करिया में रसूलों के पैगाम को सुना, वो सफर करके उस इलाके में गया, उसने वहां जिक्र किया कि हमारे यहाँ तीन लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक अल्लाह का भेजा हुआ, रहमान का भेजा हुआ कहते हैं, और वो तौहीद की दावत देते हैं। इस शख्स ने रसूलों को देखा नहीं, इसने रसूलों से मुलाकात नहीं की, इसने डायरेक्टली उनकी जुबान से कलाम और तबलीग को नहीं सुना, लेकिन इसके दिल ने माना कि यह हक है, और दिल में माना खशिय रहमान बिल गैब में हमने तीन लेवल्स किए थे, याद है? लेवल नंबर वन, दिल के किसी कोने में ख्याल आए हाँ इस्लाम हक है, दिस इज द बेसिक लेवल। लेवल नंबर टू, इंसान उस इस्लाम के ऊपर अमल करना शुरू कर दे लेकिन अभी उसको फ्लॉन्ट ना कर सके, लोगों के सामने एक्सप्रेस ना कर सके। लेवल नंबर थ्री, इंसान पूरे कन्विक्शन के साथ अल्लाह की बंदगी और इबादत करे, अल्लाह का अब्द से, आबिद से अब्द बन जाए और दुनिया के सामने अब्द बने, और उसको कोई शर्म ना आए, उसको कोई एम्बेरसमेंट ना हो, हाईएस्ट लेवल। वो शख्स रजुल, जिसको रजुल कहा गया है, एक शख्स जिसने ना रसूलों को देखा ना उनकी जुबान से कलाम सुना, इस शख्स का खशिय रहमान बिल गैब लेवल नंबर वन टू थ्री किस पर पहुंच गया? थ्री पर पहुंच गया। हमें नहीं पता होता कि आप जो बात बता रही हैं वो सामने वाले के दिल पर कैसे इम्पैक्ट करेगी। सो बताते हुए कभी भी मत रुकिए। इसको अल्लाह ताला ने अपने पैगाम से इतना मूव किया कि ये अपने आप को फौरन तबलीग के लेवल पर लेकर आ गया, और रुका नहीं, छुपाया नहीं, बल्कि फौरन उन रसूलों की तस्दीक के लिए उस करिया की तरफ दौड़ आया। इब्ने आशूर ने यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया, बस मैं ये मेंशन करके फिर इंशाल्लाह अपनी बात यहां मुकम्मल करती हूँ। इब्ने आशूर कहते हैं कि इस कहानी से ये बात पता चल रही है, और वैसे भी इंसानों की तारीख ये बात बताती है कि ज्यादातर बड़े शहरों में रहने वाले ज्यादा सख्त दिल होता। जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो बहुत ही दुख होता है। बड़े शहरों में रहने वाले सख्त दिल होते हैं अल्लाह के कलाम के मामले में, उनके दिल जल्दी नरम नहीं होते, इसलिए कि उनके पास सोचने के लिए इतना कुछ होता है, उनके जहन, उनके दिमाग ऑलरेडी इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, वो इतने बिजी होते हैं कि उनको ना कायनात पर गौर करने का टाइम मिलता है। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी खाना खाना है, बिकॉज ऑफिस पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है, फैक्ट्री पहुंचना है, क्लास में पहुंचना है। फलयंजुरुल इंसान इला तआमी का मौका कब आएगा, उसके लिए तो आपको सुकून चाहिए। सो वो कहते हैं इब्ने आशूर के बड़े शहरों में रहने वालों की मसरूफियात ज्यादा, तो उनको रिफ्लेक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। छोटे शहरों में रहने वाले लोग क्लोजर टू नेचर होते हैं, जानवर नजर आ रहे हैं, वो पैस्चर्स नजर आ रहे हैं, ग्रेस करते हुए जानवर नजर आ रहे हैं, परिंदे नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है, खेत नजर आ रहे हैं। तो इसमें अगर कोई पुकार कान पर पड़ती है तो कुरान की बात, शरीयत की बात, रेवलेशन की बात, एज वेल एज अपने सामने जो दुनिया है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन इंसान को जल्दी ईमान के ऊपर लेकर आती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि जो गरीब होंगे, मसाकीन और गुराबा मेरी उम्मत के, वो उमरा के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऐसे अमीर नहीं होंगे कि सारे अमीरों को 500 साल बाद दाखिल किया जाएगा। ऐसे अमीर भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे बाअमल गुराबा के साथ ही जन्नत के दरवाजों से दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह हमें नेमतों का हक अदा करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें इस कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमारे लिए अंबिया के किस्सों में, तारीख के किस्सों में, कुरान की अहकामात में और अपनी दुनिया की नेमतों में बेहतरीन सबक रख दे। अल्लाह हमें बाशऊर मुसलमान बनाए, अल्लाह हमें वो औरतें बना दे कि अल्लाह हम इस उम्मत को दोबारा खड़ा करने वालों में शामिल हो जाएं। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नाफअनी व इयाकुम बी आयाती व ذکر अल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।